ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उपदेशामृत पहला श्लोक। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहे तधीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशेषात्। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहे तधीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशेषात्। इसके अनुवाद में नहीं देख रहा हूं, अनुवाद मतलब शब्दार्थ, शब्द आप समझ पा रहे हैं। वाचो वेगम मतलब बोलने का वेग, मनसः क्रोध वेगम मतलब मन और क्रोध के वेग, जिह्वा वेगम मतलब चखने का वेग, वाचा मतलब बोलना, जिह्वा मतलब चखना, जिह्वा का अर्थ है चखना। उदर उपस्थ, उदर मतलब पेट और उपस्थ मतलब जननेन्द्रिया इत्यादि, उनका वेग को। एतान वेगान यो विषहेत धीरा, इन वेगों को। ये अद्भुत बात है कि ऐसा नहीं है कि आज आपको या हमको बोलने का वेग है और 10 साल के बाद जिह्वा का वेग होगा। ये सारे ही वेग एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जीव को खींचते रहते हैं। तो इनको जो व्यक्ति सहन कर सकता है वह पूरे व्यक्ति पूरा वह व्यक्ति पूरा वह धीर पुरुष पूर्वी पृथ्वी पे शिष्य बनाने के योग्य है। पहले मैं अनुवाद पढ़ता हूं। जो वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। बहुत सारी चीजें हैं और पहले तो हम अनुवाद पे ही चर्चा करेंगे, उसका फिर एक एक वेग को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें 6 वेग हैं। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर पस्थ वेगम, 6 वेग है। 7वां वेग कौन सा है? नहीं है, मतलब आपको खाली छा है। ये आप देखेंगे कि रूशल रूप गोस्वामी इतने एक्सक्लूसिव हैं कि इसके बाद आपके पास कोई 7वां वेग नहीं मैनेज करना। ऐसा नहीं कि अब आप 6 वेग तो पूरा कंट्रोल कर लिए, बाद में 7वां वेग अपने आप से आ गया। पहली बात तो ये कि हमें क्लियर हो गया कि हमारा टास्क क्या है गोस्वामी बनने में, हमें केवल ये 6 वेग करने हैं, ज्यादा काम नहीं, केवल 6 वेग को देखना है। दूसरा चीज है, वेग क्यों बोल रहे हैं? दे आर इम्पल्सिस। इम्पल्सिस मतलब, देखिए इम्पल्स का मतलब एक तो होता है धक्का लगाना और एक होता है इम्पल्स, मतलब फोर्स आएगा थोड़ी देर के लिए और फिर छूट जाएगा। देखिएगा आप मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीका है मैं धीरे धीरे खिसका रहा हूँ उसको, इसे कहते हैं धक्का लगाना, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और इम्पल्स का मतलब क्या होता है, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया और ये काफ़ी डिस्प्लेस हो गया। तो ये इम्पल्स का मतलब होता है थोड़े समय के लिए शक्ति, मतलब शक्ति बोलेंगे क्या बोलेंगे, फोर्स को क्या बोला जाएगा हिंदी में, बल। बहुत थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको ऐसे ऐसे हल्का धक्का मार रहा है तो आप रेजिस्ट करेंगे, लेकिन किसी ने मुक्का मारा तो मुक्का हमेशा के लिए नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए मुक्का आया फिर हम पीछे आउट हो जाते हैं। तो अब कहने का, हाँ कंटिन्यूटी नहीं रहती, हमेशा नहीं रहता, ये मेन बात है, हमेशा नहीं रहता है। वेग का ये सिम्टम है कि हमेशा नहीं रहता है। तो अब आप देखेंगे जितनी बार भी भक्त पदभ्रष्ट होते हैं वो सोचते हैं कि ये वेग अगर मैं इसको संतुष्ट नहीं करूंगा तो ये हमेशा ऐसा ही बने रहेगा, चाहे कोई भी वेग हो। जैसे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं इस संबंध में, जैसे मान लो पहले उससे हम इसको समझाते हैं, ये जो वाचो वेगम और जिह्वा वेगम है ये स्विच की तरह, क्या है? स्विच की तरह। एक छोटा सा स्विच बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, ये तो आप समझते हो। तो जैसे हमारा वाणी का वेग है, अगर उसको पकड़ लिया तो मन और क्रोध का वेग कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पहला शब्द आ रहा है वाचो वेगम और दूसरी शब्द उसमें आ रहा है जिह्वा वेगम। मैं पूछूंगा कल आप लोगों से फिर इस बात को। और जिह्वा वेगम से क्या है, अगर जीभ के वेग को कंट्रोल किया तो पेट का वेग और उपस्थ का वेग हो जाएगा। जीभ का मतलब है चखना, जीभ से ही बोलते हैं और जीभ से ही चखते हैं। तो अगर हम जो बोल रहे हैं उसको कंट्रोल कर लेंगे तो मन और क्रोध के वेग सहन कर पाएंगे। जैसे आगे बात आएगी, मान लीजिए क्रोध आता है तो जितना हम जीभ से बोलेंगे उतना और क्रोध बढ़ जाता है, होता है कि नहीं होता है? और जब प्रायः लोग लड़ रहे होते हैं तो क्या वो लोग प्रेम से बोलते हैं? तो लोग बेवकूफ हो, समझते नहीं मेरी बात, कोई ऐसे बोलता है? आपको थप्पड़ मारूंगा मैं, ऐसा तो नहीं बोलता ना, चीख चीख के बोलता रहता है। और जितना वो और मारने की इच्छा होती है उसको और वो क्रोध से बोलता है, विज्ञान समझते नहीं। और प्राय आप देखेंगे जब लोगों की सुलह करानी होती है, अरे थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, पहला वो बोलते हैं शांत हो जाइए, क्योंकि जीव के जो वेग है उससे आपका क्रोध और बढ़ जाएगा, मन और उद्विग्न हो जाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तो हम इस पर इतना ही बोल रहे हैं, आगे हम और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। और जीव का वेग है जैसा हम बहुत अगर क्या कह सकते हैं, भगवान का प्रसाद छोड़ करके उधर उधर की चीज खाएंगे तो हमारा पेट तो खराब होगा ही और बाकी सारी इंद्रियों में रजोगुण तमोगुण भर जाएगा। हम आपको ये नहीं बोल सकते कि एकदम सूखा पत्ता खाओ, क्योंकि मैं भी नहीं खा रहा हूँ सूखा पत्ता, लेकिन ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान का प्रसाद छोड़ करके हम कुछ ना खाएं, यही पाद प्रपात जाके बोलेंगे तो उससे उपस्थ का वेग और उदर का वेग कंट्रोल होगा। तो इतना अभी हम कल एसेंस में बोल रहे हैं कि जीभ का वेग कंट्रोल करना है और वाचा का वेग कंट्रोल करना है, बोलने का वेग। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि क्यों करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया इन वेगों के पीछे चल रही है, पूरी दुनिया इन वेगों के शिष्य है। तो जो वेग, जो व्यक्ति इन वेगों को सहन कर सकता है वो उसी के पास अधिकार है कि वो दूसरों को शिष्य बना सकता है, बल्कि बाकी लोग उसके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाएंगे। मेक सेंस? जैसे आप लोगों को पता होगा प्रभुपाद जी का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि उन्होंने पूछा कि लोग आपको पता है कि इतने सारे लोग मुझे सम्मान क्यों करते हैं, तो क्या उत्तर था श्रील प्रभुपाद जी का? यस, क्योंकि मैं काम वासना से मुक्त हूं, अर्थात इन वेगों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और एक और बहुत गंभीर बात है इस, ये तो पूरा ही बहुत सुंदर चीज है कि जो व्यक्ति इन वेगों का शिष्य है वो लोगों के प्रति अपेक्षा करेगा ही। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति इन वेगों का शिष्य है वो अनपेक्षा नहीं हो सकता। अनपेक्षा मतलब दूसरों से अपेक्षा करना है, ये मेरा ये इस वेग को संतुष्ट करेगा, वो मेरा उस वेग को संतुष्ट करेगा।
एक्सपेक्टेशन,
यस। तो इसलिए बड़ी ही फजीयत हो जाती है अगर हम अपेक्षा वाले व्यक्ति हो जाते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं भक्ति में? आप सोचो कि हमेशा हर परिस्थिति में आपको सम्मान मिले, नहीं तो क्रोध आ जाएगा, तो आप दूसरों पे डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? कि जब आपको सम्मान देंगे तब तो आप खुश रहेंगे, अन्यथा हम खुश नहीं रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर इस प्रकार से हम वेगों को सहन कर लेंगे तो कितना सुंदर गुण आ जाएगा, है कि नहीं? आप ये तो रिलेट कर पा रहे हैं, अनपेक्ष हो जाएंगे ना। यस, हम अपनी प्रसन्नता की चाबी दूसरों को दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारी बातें हम सीखने को मिलेंगी इस श्लोक में। हमने इस बात की चर्चा कर ली है कि पूरा जगत जो है इन वेगों का श्रद्धालु शिष्य है, पूरा श्रद्धा रखा हुआ है कि भाई इन वेगों को संतुष्ट करना ही जीवन का परम सिद्धि परम लक्ष्य है। लेकिन इसके पहला ही श्लोक में बोल रहे हैं इसके बिल्कुल हमको विपरीत जाना है। तो आगे हम जरा पढ़ते हैं प्रभुपाद जी अनुवाद में क्या बोल रहे हैं, कुछ सॉरी तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं। किसी को कुछ बोलना है इस संबंध में, कुछ वाचो वेगम प्रयुक्त करना चाहते? ठीक। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करता है, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया था, किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। इसको मैंने इंग्लिश में अंडरलाइन किया हुआ था। अनुभव कहाँ से प्राप्त होता है? अरे आप लोग ऐसे सोच रहे हैं जैसे हमने कुछ वेदांत सूत्र का प्रश्न किया है। अरे इसमें क्या लिखा है? सुन करके और देख कर। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कैसे अनुभव ले लेता है? सुन करके। बहुत बार जब हम प्रवचन करते हैं, या भक्त लोग भी प्रवचन करते हैं, सन्यासी लोग भी प्रवचन करते हैं, तो वो गृहस्थ आश्रम के बारे में बोल देते हैं। तो व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भाई आपके तो बच्चे नहीं हैं और कुछ नहीं है, आप कैसे सीख पा रहे हो, कैसे बता पा रहे हो? तो क्या उत्तर है? सुन कर करके, ऑब्जर्व कर करके। और जितने इंद्रियां संयमित होती हैं व्यक्ति देख पाता है। ये भी एक अद्भुत बात है। जितना हम इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे उतनी चेतना ढक जाएगी और वास्तविकता को हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है जो हमें देखनी है। ये भी कल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कल वाले मौखिक एग्जाम में, कि अनुभव कैसे प्राप्त होता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्या हमारे लिए हित है, हितकारी है, और क्या हमारे लिए अहितकारी है, वो कैसे मालूम चलेगा? सुनकर ना, अनुभव करके। बहुत अनुभव करके मालूम तब चलेगा जब वो अहित करना चालू कर देगा। जैसे मूली और दूध पीने से कोढ़ हो जाता है, सुना है ऐसा मैंने, कोढ़। तो अब अगर हम सुन करके सीख जाएंगे तो बच जाएंगे, और अनुभव करके करेंगे तो आप समझ गए ना मेरी बात। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुनने में बहुत ध्यान रखता है। महाराज जी इस बारे में बोल रहे थे, सुनने से ही ज्ञान होता है और सुनने से ही दुर्मति का नाश होता है। अभी श्रुत्वा करके श्लोक आ रहा था, मैं भूल रहा हूँ, सुनने से ही सब कुछ होता है। इसलिए वो तो है, महाराज जी नीति के कुछ लोग बोल रहे थे कि सुनने से ही व्यक्ति को ज्ञान होता है और सुनने से ही मति ठीक होती है। इसलिए सुनने में हमें कमी नहीं करनी चाहिए। और हम क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? क्योंकि हम सही हैं। बद्धात्मा होने के नाते हमारा माइंड हमें कन्विंस किया है कि यार ऑल राइट, कोई गलती नहीं है आपकी। लास्ट टाइम आपने कब गलती करी इस जन्म में? कभी नहीं। कन्विंस है हम कि हमने गलती कभी करी नहीं, गलत और अभी तो गलत हो ही नहीं सकते। हम लोग हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र सुना नहीं, एक नाम जप करने का कितना लाभ होता है? हम तो इतने साल से जप कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हम। ये हम कन्विंस हैं क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं क्लास में कुछ भी बात होगी, स्पेशली ऐसी क्लास में हमें अपनी गलतियां दिखाई पड़ेंगी। तो इसलिए सुन करके हम सीख लेंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति होगी। और इसको आप देख सकते हैं, सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं अपना हित अहित कुछ नहीं जानता, आप मुझे शिक्षा दीजिए। माइक पे बोलिए अगर कुछ बोलना चाहते हैं। यस माइक।
गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है बिजली का, वहाँ पे लिखा होता है खतरनाक, 33,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट, तो सुनकर देख सुनकर ही हम मान सकते हैं,
मान सकते हैं।
और कहेंगे कि हम नहीं टच करके देखेंगे तो फिर
खराब हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसलिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखी है कि सुनना बहुत जरूरी है शास्त्र को, और नियमित रूप से सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि हम नियमित रूप से भूल जाते हैं। याद रहे तो फिर अप्लाई करें, आगे की बात है, याद ही नहीं रहता लोगों को। और स्पेशली जब ये वेग आते हैं तब भूल जाते हैं, उसके बाद याद आता है, वाचो वेगो मनसा क्रोध वेगो, उसके बाद याद करना चालू करते हैं, उसके पहले याद करना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी हमने। ओके, जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम ये बात भी आ रही है चौथे स्कंद में, जब ध्रुव महाराज की कथा आती है तो उसमें अधर्म के वंशज का वंशों का वर्णन है, उनकी कथा से पहले सुना होगा आप लोगों ने। तो उसमें लिखा है कि जो इस अधर्म के वंश को 3 बार सुनता है उसकी पाप नष्ट होता है। तो अधर्म का वंश सुनने से क्या होता है, व्यक्ति डरता नहीं इन सब चीज़ों से, मैं दूर रहूँगा दुरक्ति से और बुरी वचन से और यातना से निरय से इत्यादि। तो कभी कभी इनका वर्णन सुनने से भी, या कभी कभी कहना चाहिए शास्त्र के अनुसार, बुरी चीज़ गलत है ये सुनने से भी व्यक्ति की मति ठीक रहती है। जैसे नरक का वर्णन भी भागवत में दिया गया है। ओके, कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। कम बुद्धिमान मतलब सुनने के बाद नहीं सीख सका, किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ? अतः परीक्षित महाराज ने पूछा, दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम, बोलिए, जाननम प्यात्मनो हितम, करोति भूयो विवशः, प्रायश्चित्तम अथो कथम, क्वचिन् निवर्तते भद्रात्, क्वचित् चरति तत्पुनः, प्रायश्चित्तम अथो पार्थम, मन्ये कुंजर शौचवत्। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है, वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है, तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ? इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप यानी कीर्तन करते हैं और साथ ही ये सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस्य हि पाप बुद्धि ही, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वे पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता, अतएव असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। ओके, एक बात अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को देख रहे थे 6.2.9-10 में, तो हमने एक बहुत सूक्ष्म विषय पे बात किया था कि परीक्षित महाराज प्रायश्चित की भर्त्सना कर रहे हैं, प्रायश्चित अर्थात व्रत तपस्या की भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन भक्त लोगों के हृदय में भी कभी कभी जब पाप करने की प्रवृत्ति नहीं तुरंत नष्ट होती है, तो भक्ति की भर्त्सना क्यों नहीं कर रहे? मैं फिर से याद दिला रहा हूं, या ध्यान दिला रहा हूं, यहां प्रायश्चित की भर्त्सना तो की जा रही है कि प्रायश्चित तो मन्ने कुंजर शौचवत है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और तुरंत उसके हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, तो क्यों उसकी भर्त्सना नहीं कर रहे?
ये सर पंखा इसे बंद हो गया है, लेकिन वो
यस, क्योंकि वस्तुतः पहले नाम के उच्चारण के साथ ही उसकी पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है, लेकिन भगवान जानबूझ करके बाहर की दुनिया को से भक्ति की महिमा को छुपाने के लिए तुरंत पापों की प्रवृत्ति नष्ट नहीं करते। और एक कारण भी हो सकता है कि भक्त कोई अपराध कर देते हैं जिसके कारण भोग की वासना बढ़ जाती है। इस संबंध में महाराज समझा रहे थे, जब हम किसी वैष्णव की मान लीजिए निंदा कर देंगे, तो दिक्कत यह है कि उस समय हमें कुछ भी नहीं लगता कि कुछ हुआ है। जैसे कि चंद्रमा धीरे धीरे करके कम होता है, लेकिन हम देखेंगे इस प्रकार से या दो भी दस अपराध हैं अगर उसको हम करते हैं तो भोगों की वासना हृदय में बढ़ जाती है। ये बहुत गंभीर बात है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। नाम की अपनी महिमा है, अनंत महिमा है, लेकिन अगर हम नाम के ही प्रति अपराध करेंगे और बचने का प्रयास नहीं करेंगे तो नाम हमारी सेवा करने लग जाएगा। बेहतर समझते हैं, हम नाम के सेवक हैं, नाम हमारे सेवक नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी को किसी ने बार प्रभुपाद बता रहे थे उदाहरण में, अपने उसमें दिखा मैंने कि एक बार महामारी फैली थी कलकत्ता में, तो एक बाबा ने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र करो, कीर्तन करो तो चली जाएगी, और चली भी गई। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे लेकिन ये नाम अपराध है, क्योंकि नाम को अपनी सेवा के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि अगर हम नाम का आस्वादन करना चाहते हैं, नाम के से प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो नाम के प्रति अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं किसी का मर्डर कर दूंगा और उसका हरे कृष्ण कर लूंगा, तो उसका शुद्धिकरण तो होगा लेकिन बहुत बाद में जाकर के होगा। लेकिन एक व्यक्ति अनायास गलती से, कोई भक्त गलती करते हैं और भगवान की भक्ति का ही आश्रय लेते हैं तो भगवान उसको शुद्ध करते हैं। दोनों के एटीट्यूड में अंतर है और आपको याद होना चाहिए कृष्ण भावना में प्रगति कितने समय तक आप भक्ति कर रहे हैं उस पर निर्भर करती है। चेक कर रहा था, नहीं कितने समय तक करते हैं उसे महत्वपूर्ण नहीं है, किस मनोवृत्ति में करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सीख रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात हम ये भी सीख रहे हैं कि पाप क्यों नहीं जाता है, पाप का मूल कारण क्या है, आप सब लोग जानते ही होंगे, अविद्या। अविद्या का अर्थ क्या है, माइक पे बोलिएगा, हिंदी में बोलिए। अविद्या के दो मुख्य पहलू हैं।
मैं भगवान का नित्य दास नहीं, मैं यह शरीर हूं, ये समझना अविद्या।
सही बोला आपने, लेकिन दो मुख्य पहलू हैं। पहलू ये है कि हम पहले ये भूल जाते हैं कि हम हैं कौन, आपने वही बात बोली, और दूसरा जो हम नहीं हैं वो मानते हैं। और इसी चीज को भागवत में बोला गया है अहम और मम। कपिल देव जी बोलते हैं जितना मैं मानूंगा कि मैं शरीर हूं, शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, तभी काम लोभ इत्यादि मल हृदय में आता है, फिर व्यक्ति बार बार इन क्रियाओं को करता है। हम कौन हैं ये भूल जाते हैं और जो नहीं है वो याद रखते हैं। इसको माइक को देख, माइक, जो हम नहीं हैं उसको याद रखते हैं, हम ये शरीर नहीं है उसको तो हम याद रखते हैं, और हम भगवान के दास हैं ये भूल जाते हैं। तो ये अविद्या के कारण होता है, और भक्ति सीधे अविद्या पे काम करना शुरू करती है। जिस दिन आपने हमने पहली बार नाम सुना तभी से शुरू हो गई अविद्या, करती जा रही करती जा रही करती जा रही। हाँ, अविद्या को बढ़ाने वाले कार्य नहीं करेंगे तो बहुत तेजी से इस बात का अनुभव कर पाएंगे। दिक्कत ये होती है कि अविद्या तुरंत नष्ट नहीं होती है, तो इस कारण से हम लोग पुरानी आदतों से भी जुड़े रहते हैं। इसलिए भक्त संघ बहुत जरूरी है ताकि हम लोग गलत आदतों से बच के रहें और भगवान की भक्ति ठीक से करते रहें। ओके, तो इस कारण से कृष्ण भावना मृत, यहां पे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सच्चा प्रायश्चित क्या है, सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना। और ये बहुत अच्छी लाइन है, अगर आप इस पर विचार करें, कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो आप उसे कैसे उठाते हैं, मुख्य तरीका क्या होता है, शब्द के द्वारा। तो हम सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम है, ये बहुत बड़ी एनकरेजमेंट की बात है, क्या बोलेंगे, प्रोत्साहन देने की बात है। ऐसा नहीं कि बाहर से लेके आना है, लेकिन हम श्रवण को कितना महत्व देते हैं उसके अनुसार जागृत होगा, और उसके अनुसार सुप्त भी हो सकता है। बहुत ही शब्द सुनेंगे तो फिर सो जाएंगे, कृष्ण भावना सुप्त हो जाएगी, और आध्यात्मिक शब्द सुनेंगे तो फिर ये जागृत होगी। ये बात बहुत सिंपल है, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पापों की प्रवृत्ति को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, और उसको जागृत करने का सबसे प्रबल तरीका क्या है, श्रवण कीर्तन। श्रवण, एक्चुअली श्रवण से मतलब है जब हम जप कर रहे हैं तब भी श्रवण करें, और जब हम लोग श्रवण कर रहे हैं शास्त्र का उसको भी श्रवण करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रवण के माध्यम से भगवान सीधे हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। अगर आप विचार करें तो कान में एक बार भगवान चले गए तो फिर हृदय में पहुंचने से रोक ही नहीं सकते आप, जाएगा ही हृदय में। कान ने एक बार पकड़ लिया किसी शब्द को तो हृदय में जाता ही है, कितना सीधा रास्ता अगर आप विचार करें, कान और कान से सीधे आपके हृदय में, चित्त में होता है कि नहीं होता। तो ये चीज हमको अपने जीवन में बहुत धारण करनी चाहिए कि हम कितना श्रवण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी एक्चुअली इस बात को भगवत गीता में बोलते हैं, शुद्ध ब्रह्मचारी मतलब अपने को भौतिक शब्द से बचा के रखे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, लेकिन भौतिक शब्द से ही भौतिक इच्छाओं का निर्माण होता है एकदम स्पष्ट, और आध्यात्मिक शब्द से इच्छाओं। अगर आप देखिए हमारे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी परेशानी है तो वैसे यही है कि कहीं भौतिक इच्छा ना आ जाए, या जो भी है वो हमको ओवर पावर ना कर ले। सभी भक्त के जीवन में होता है, लेकिन प्रमुख रूप से ब्रह्मचारी के जीवन में, भक्त के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें सबसे जो खतरनाक चीज है वो क्या है हमारे जीवन के लिए, भौतिक शब्द, बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी एक प्रमाणिक विधि होती है। यहां इंग्लिश में बोला गया है स्टैंडर्ड प्रोसेस, बड़ा सुंदर बात है। जिस तरीके से आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न होगा भक्ति के द्वारा, तो क्या उसी तरीके से आपके हृदय में भी होगा? इन्होंने बोला है हो सकता है, और अभी हमने क्या पढ़ा है, प्रामाणिक विधि, स्टैंडर्ड प्रोसेस। अगर आपको जुखाम है तो अगर उस दवा से आप ठीक होते हैं और उनको जुखाम है तो उस दवा से आप ठीक नहीं होंगे, तो आप कहेंगे नहीं हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत प्रोत्साहन की बात है। क्यों प्रोत्साहन की बात है? क्योंकि बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। इस भक्ति के प्रोसेस को, स्टैंडर्ड प्रोसेस को अगर हम पालन करते रहेंगे तो ये हमें शुद्ध करेगा ही, क्योंकि हम सबकी बीमारी एक ही है। ये बातें आप समझ पा रहे हैं? स्टैंडर्ड प्रोसीजर है मतलब उसको अगर विधि का पालन करेंगे तो हम शुद्ध हो ही जाएंगे, और उसमें कोई अपवाद नहीं कि ये नहीं होंगे और ये हो जाएंगे और वो नहीं होंगे और ये हो जाएंगे। जो भी ठीक से करेगा वो होगा। ठीक है, ओके। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। तो ये हमें काफी अच्छी शिक्षा लेनी है कि अपने आसपास के वातावरण को और अपने रूम इत्यादि को भी स्वच्छ रखना है। एक छोटी सी शिक्षा है जो हमको हमेशा धारण करनी चाहिए। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, प्रभुपाद जी बोल रहे। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। ये एक एक लाइन कितनी महत्वपूर्ण है, ये समझ किसको समझ में आया? इससे पहले मैं कुछ टीका करूं, आप में से कोई आचार्य गण जो है इनमें टीका कर सकते हैं, क्या है इस लाइन का महत्व? कुछ भी बोलना चाहते हैं? यस, माइक पे बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। आप सबको मौका देंगे।
इस मनुष्य जीवन में हम भक्ति के द्वारा जो अज्ञान है उसको दूर कर सकते हैं और भगवान का दास बन सकते हैं, मतलब भक्ति के द्वारा अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल सही है। और कुछ माइक दीजिए।
ये समझना, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और भगवान से मेरा एक नित्य संबंध है, और उस संबंध को दोबारा से जोड़ने का प्रयास करना।
बिल्कुल सही बोला है। इसमें मैं खाली एक चीज ऐड करूंगा, इसके लिए ही मानव जीवन है, बस ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे ये माइक किसके लिए ब्रो जी?
बोलने के लिए।
अच्छा, आप कोई बोले कि नहीं, बोलने के लिए भी है, केवल बोलने के लिए है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इसका उपयोग हम लोग ऐसे अमेरिका से आइसक्रीम के कोन की तरह भी लगता है, तो खाने का प्रयास नहीं करना चाहिए इसको, है ना? तो माइक को हम लोग आइसक्रीम के कोन की तरह उपयोग में नहीं ला सकते, ये बहुत गंभीर विषय। तस्सेव हेतु, तस्सेव हेतु, उसी के लिए हेतु, उसी के लिए प्रयास करना है मानव जीवन में। ना लभ्यते यद् भ्रमताम उपर यदा, ये लोडेड है, ये पूरा पैराग्राफ जो परपट है प्रभुपाद जी का, पूरा शिक्षाओं से भरा पड़ा है। तो ये हम लोग खुद जितना कन्विंस होंगे फिर उतनी मात्रा में दूसरों को कन्विंस कर सकेंगे। धन कमाने के लिए या और कुछ कमाने के लिए नहीं है, बात तो यही है। यस प्रभु, कुछ बोलना चाहते हैं माइक? यस, सिद्धांत, भागवत सिद्धांत, भागवत धर्म का अनुशीलन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी कृष्ण भावना जागृत होगी। नारद मुनि कहते हैं पूरे विश्व का भी द्रोह करने वाला व्यक्ति हो, द्रोह मतलब समझते हैं दुश्मनी, पूरे विश्व से भी दुश्मनी करने वाला कोई व्यक्ति हो अगर भागवत धर्म का अनुशीलन करता है तो शुद्ध हो जाएगा, इतना शक्तिशाली है। तो सिद्धांत वही है, अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कारु, भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करेगा तो जागृत हो जाएगा, उसके लिए ही मानव जीवन दिया गया और कुछ भी नहीं।
ये
सिद्धांत, हाँ ये प्रभुपाद आगे बता रहे हैं आगे क्या कैसे सिद्धांत हैं। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य, मैं फिर बोलना चाहता हूं इस बात पे कि मन हमारा नियमित कुछ नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं, ना आध्यात्मिक ना भौतिक। कल याद को याद हो मैंने बताया था कि अगर आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो रोज नहीं पढ़ने देगा मन आपको, इसका कोई भागवत से संबंध नहीं है, मन ही ऐसा है, वो चंचल है, आप भौतिक वस्तु में भी नहीं लग पाएगा। तो इसलिए ये सोचना कि मैं जो है भक्ति में ही मैं रोज नहीं कर पा रहा हूं तो नहीं, चेंज करने की प्रवृत्ति ही मन में होती है, रजगुण तमगुण के कारण ऐसा होता है। तो भक्ति में तो और आवश्यक है कि उसको हम नियमित रूप से करें, ठीक है, यही तप है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य शुद्धि तथा योगासन के अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। ये है नॉर्मल प्रोसीजर जो आप पढ़ेंगे, तपसा ब्रह्मचर्य ना समेन नियमेन दमेन नियमेन च, श्रीमद् भागवतम 6th canto 1st chapter में इसको बताते हैं कैसे पापों का नाश करेगी। ये वस्तुतः ज्ञान की विधि है, ये नियम पालन करो वो नियम पालन करो, लेकिन इसको बाईपास करके जो विधि है वो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो देखिएगा। और ये प्रभुपाद जी ही नहीं बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का ही शब्द है, महत्सेवा द्वार माहुर विमुक्ति। और नारद मुनि भी बोलते हैं कि इस अनर्थ को आप ऐसे जीतिए, इस अनर्थ को आप ऐसे जीतिए, अंत में बोलते हैं महत सेवा के द्वारा सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ सारे कष्टों को आप, अनर्थों को आप जीत सकते हो। अब यहां बोल रहे हैं किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार हैं जो भी आप बोल रहे थे, अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना। शील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। तो देख लीजिए प्रभुपाद जी बात क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा विचार कीजिएगा। जब हम लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे और जब हम देखेंगे कि वाणी कवि को नियमित करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो हमारी प्रोग्राम्ड अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि तपस्वी की तरह रहना है, एकदम चुप रहना है, बोलना नहीं है, कोई कुछ कुछ भी बोले उसको रिएक्ट नहीं करना है, यही इंद्रिय संयम की प्रायः परिभाषा समझी जाती है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि भगवत संबंधी सेवा में प्रयुक्त करना है, इन वेगों को भगवान की सेवा में नियोजित कर देना है, और यही इस ये थ्रेड है इस पूरे कह सकते हैं तात्पर्य का। इन वेगों को ऐसे सहन करना तो ठीक है, कभी कभी वैसे भी सहन करना होता है, लेकिन मेन बात है, मुख्य बात है इन वेगों को भगवान की सेवा में नियोजित कर दें, और अगर नहीं नियोजित कर सकते हैं तो सहन कीजिए, उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। मैं नहीं समझता कि आज वाणी के वेग की हम चर्चा कर पाएंगे, लेकिन एक बात है थोड़ी सी चर्चा हम शायद कर सकते हैं।
मुझे एक चीज पूछ।
यस बोलिए।
तो जो जैसे कि जो वेग आते हैं व्यक्ति को चाहे कि किसी के उसको बहुत कंट्रोल
माइक पे पूछिएगा।
जैसे कोई व्यक्ति है वो उसको जान पूछ के एकदम फोर्स करके कंट्रोल कर रहा है तो क्या ये सही है करना?
बिल्कुल सही है। मान लीजिए गाड़ी का स्टेयरिंग थोड़ा खराब है और गाड़ी गड्ढे में जा रही है तो फोर्स लगेगा ना, ये कहेगी तुम फोर्स क्यों कर रहे हो अपने स्टेयरिंग को रोकने के लिए। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि इसे बहुत दिन चलने वाला नहीं, तदवन्न रिक्त मतयो ये तयोपि रूढ़ा श्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। श्लोक याद होगा आप लोगों को चतुस्कंद का, कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका मन रिक्त है, कृष्ण की सेवा से भरा हुआ नहीं है उनका मन, इस कारण से जो तथाकथित योगी जन हैं या जो भक्त भक्त नहीं हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे, वो अपने मन को संयमित नहीं कर पाते, कभी ना कभी वो इंद्रित के वेगों को से गिर जाते, जैसे आप लोग विश्वामित्र मुनि के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आप उदाहरण देख ले हरिदास ठाकुर जी, क्योंकि उनकी इंद्रियों को भगवान अपनी तरफ खींच रहे थे, इसलिए माया भी कुछ नहीं कर सकी। प्रवृत्ति नहीं जाती है वश करने से। और जब देखिए आत्मा को तो सुख चाहिए, और अगर इंद्रिय भोग के द्वारा नहीं मिल रहा है तो फिर और कृष्ण भावना के द्वारा नहीं मिल रहा है तो वापस वो इंद्रिय भोग की तरफ जाएगा ही। इसलिए आवश्यक है कि इन वेगों को कृष्ण की तरफ मोड़ा जाए। यही बात प्रभुपाद जी बोलेंगे, और हम इससे यहाँ सीख रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी सूखे इंद्रिय निग्रह के बारे में नहीं बात कर रहे, अपितु कृष्ण संबंधित सेवा रूपी वेग नियमन की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? कि अपने वेगों को कृष्ण की सेवा में समर्पित कीजिए। जैसे कि हम लोग अभी वाणी के वेग को ही कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग भगवान के बारे में बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाणी के वेग का नियमन है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब हम लोग एक घंटा अगर बोले सब लोग ध्यान करिए शांत हो जाइए तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। हम लोग कहेंगे रोज ब्रह्मचारी क्लास में हम लोग एक घंटा शांत रहेंगे, तो कितने लोग इसमें साइन अप करना चाहेंगे? शांत रहेंगे, हम बैठ के जब करेंगे फिर क्या दिक्कत है। और वाकई कुछ लोग इस प्रकार से बहुत ज़्यादा सोचते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, और मैंने पूछा ट्रांसेंडेंटल क्या होता है, वो पता नहीं है। तो बच्चा आप किस पे ध्यान कर रहा है, छोटे बच्चे को सिखा रहे हो, किस पे ध्यान करेगा? आइसक्रीम पे ध्यान करेगा, किस पे करेगा, कौन जानता है? कुछ बोलना चाह रहे थे? माइक पर दीजिए।
शुष्क ना होकर के कृष्ण भावनामृत क्या है? रसास्वादन है।
यस,
इसलिए क्या कहते हैं।
लेकिन एक और बात है, आप गीता में आप उसको पढ़ सकते हैं, निराहारस्य देह बिना, क्या है श्लोक वो, रसवर्जम रसोप्यस्य परम विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो उसमें लिखा है कि एक बद्धात्मा को भोग से आप दूर रख सकते हो, लेकिन भोग का स्वाद रहता है, लेकिन इच्छा बनी रहती, लेकिन उसमें लिखा है रसवर्जम रसोप्यस्य, लेकिन इस रस को भोगने को वर्जित करके ही रस का साधन कर पाएंगे। उत्तम रस की प्राप्ति तभी होगी जब यहां भी सहन करना सीखें। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही करना पड़ेगा, तभी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चार नियमों का पालन करना आवश्यक है, और चार नियमों के पालन के साथ साथ भगवान का नाम जप और भक्ति करें तो फिर प्रगति बहुत तेजी से हो, तभी हम लोग भक्ति का सहन कर सकते हैं। और इस चीज को एक आचार्य भी बोलते हैं, लोचन दास ठाकुर, विषय छाड़िया से रसे माजिया मुखे बोलो हरी हरी। सुना है अपने भजन? विषय को छोड़िए और भगवान की भक्ति करिए, भगवान की भक्ति करिए तो उस रस का हम में आस्वादन कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है, जैसे कोई व्यक्ति अगर पूर्व में जा रहा है तो पश्चिम में नहीं जा सकता, तो उसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, साथ साथ निषेध भी पालन करने हैं।
तब अविद्या
का यस, अगर हम अविद्या नष्ट करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम अविद्या को बढ़ाने वाली चिक्रियाओं से बचें। ठीक है, और कोई प्रश्न है? चलो स्टॉप हियर। हाँ, नहीं, प्रभुपाद जी ही बोलते हैं कि वह नाम अपराध है, ठीक नहीं किया शुद्ध भक्ति के स्तर से। ऐसे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह परपट में कि व्यक्ति 3 घंटा अगर संकीर्तन करे तो सारी भौतिक इच्छाएं भी समाप्त पूर्ण हो जाएंगी, आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। तो किस व्यक्ति को बोला जा रहा है देखना चाहिए। अकाम सर्व काम वह मोक्ष काम उदारध, ये भी बोला जा रहा है। दूसरी जगह ये भी बोल रहे हैं शुद्ध भक्त की कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा के लिए आपको पास आता है तो अच्छी बात नहीं है, वो अपना वणिक है। और वृतासुर कहते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं, अपना हित नहीं जानता। ये पूजक की तरफ से है, दूसरा भगवान देख रहे हैं कि भगवान भी देख रहे हैं कि मेरा अपना हित नहीं जानता है। सब लोग जानते हैं श्लोक को, आमी भजे मांगे विषय सुख, फिर भगवान उसको ठीक करते हैं, लेकिन सारे प्रोसेस में समय लगता है। देखिए भगवान का सेवा चाहे अपने हित के अपने सेवा में लगाएं या बाकी की सेवा में लगाएं, लेकिन नाम को अपनी सेवा में लगाना या समाज की सेवा में लगाना ये नाम के प्रति अपराध है। आप किसको प्रचार कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आप किसी को बोलो कि हरे कृष्ण मंत्र करो आपका मन शांत होगा, तो हरे कृष्ण मंत्र क्या इसीलिए करते हैं बस? आपको देखना चाहिए कि पहले बात आपको ये देखना चाहिए कि हम लोग किस असेंबली में डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ न्यू भक्ता को प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्या आप लोग बस अपनी मन की शांति के लिए हरि नाम थोड़ा कर रहे हैं? कभी भी डिस्कशन होता है तो किस असेंबली में हो रहा है वो देखना चाहिए। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो आप बोलेंगे 0, 1, 2, 3, वन प्लस वन टू पढ़ाएंगे, अगर आप मान लीजिए पढ़ा रहे हैं बारहवीं के बच्चे को तो वन माइनस टू भी पढ़ा देंगे आप, तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, वन माइनस टू तो आपने नर्सरी में बोला था वन नहीं हो सकता है, तो हाँ नहीं हो सकता है, लेकिन वो स्तर के लेवल की बात है। अरे वो छोड़ दीजिए, समाधि के मंदिर में तो बोलिए कैसे भी नाम जप करिए, ठीक है ना, खाई ते वही महाप्रभु बोल रहे हैं, खाई ते सुई थे यथा तथा नाम लो, और वही महाप्रभु बोल रहे हैं कि ध्यान पूर्वक ना जप करना एक अपराध है।
तो
यस नहीं, एनकरेज की बात नहीं है, जो व्यक्ति का स्तर है उसके अनुसार शिक्षा दी जाती
है।
हमारे घर में प्रॉब्लम बहुत सारा है, घर ही प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम नहीं घर ही प्रॉब्लम है। कृष्ण भावना, तब कृष्ण भावना में अगर नहीं है व्यक्ति तो परेशान तो रहेगा ही, ठीक है। देखिए ये पूरी तरह से सही नहीं है, प्रॉब्लम ठीक होगा या नहीं होगा हम ठीक हो जाएंगे, और हमारा ठीक होना जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम इस जगत में हमेशा बनी रहेगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, हमारा ठीक होना, हमारा दृष्टिकोण ठीक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। इस जगत में ऐसा मत सोचिए कि भक्तों को जो है कभी शरीर में कोई कष्ट नहीं आता, क्या आपको मच्छर नहीं काटा कभी, तो उसकी वजह से क्या नहीं, नया पुराना कुछ भी हो ये नहीं समझ में आना चाहिए। नए लोगों को प्रचार करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे, ये उपदेशामृत नए लोगों के लिए नहीं, आप समाधि मंदिर में उपदेशामृत बांट रहे हैं क्या, नहीं बांट रहे ना, ठीक है।